हरी साधक उसे कहते हैं जो संघ की विचारधारा द्वारा अपने साधन का निर्माण करता है। उसे यह आत्मविश्वास हो जाता है कि मानव सेवा संघ की विचारधारा जीवनोपयोगी है। संस्था की दृष्टि से स्थायी साधक भी संघ का महत्वपूर्ण अंग है। आजीवन कार्यकर्ता होने के पहले स्थायी साधक होना अनिवार्य है। स्थायी साधक न हो और आजीवन कार्यकर्ता बनना चाहे और कहें कि हम खूब काम करेंगे तो वह संघ के लिए ज्यादा मंगलकारी नहीं होगा और न उसका स्वयं का हित होगा। लेकिन यदि स्थायी साधक होकर काम करें तो मानव सेवा संघ का जो उद्देश्य है अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण वह पूर्ण हो सकता है। स्थायी साधक हुए बिना संघ की सेवा का कार्य करने वाले का खुद का ही कल्याण नहीं होगा तो उसकी सेवा से संस्था का विकास भी संभव नहीं है। स्थायी साधक की पहचान क्या है? स्थायी साधक उसे कहते हैं जिसका मानव सेवा संघ की प्रणाली के अनुरूप पूरा जीवन साधन हो जाए। स्थायी साधक जो होता है वह सत्संग के द्वारा साधन का निर्माण करता है, किसी अभ्यास के द्वारा जो साधन का निर्माण करता है वह मानव सेवा संघ का स्थायी साधक नहीं है। पूरा जीवन साधन कब होगा? जब हम इस सत्य को स्वीकार करें कि शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय प्रेम से भर जाए, यह स्थायी साधक का लक्ष्य है और यह सत्संग से होता है, अभ्यास के द्वारा नहीं। विश्वास और विचार के द्वारा होता है। विश्वास और विचार सत्संग का मूल आधार है। विश्वास क्या है? हमारा और भगवान का जातीय संबंध है और आत्मीय संबंध है, यह विश्वास है। विचार क्या है? कि शरीर और संसार का जातीय संबंध है। मन वाणी कर्म से बुराई रहित होने से विकास होता है। उदार और स्वाधीन होने से विकास होता है, यह विचार सिद्ध है। विश्वास से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत प्रेम विश्वास से सिद्ध है। विचार के आधार पर स्वाधीन होने का प्रश्न और विश्वास के आधार पर प्रेमी होने का प्रश्न स्थायी साधक होकर हल करना होगा। कुछ दिन पहले मानव सेवा संघ के माध्यम से संपूर्ण जीवन को साधनमय बनाने की अभिलाषा रखने वाले भाई बहनों ने स्थायी साधक होने का व्रत लिया था। उनका साधन और उनका सत्संग का क्रम चल रहा है। गत वर्ष इस संबंध में न कोई बातचीत हो सकी, न स्थायी साधकों का एक विशेष आयोजन प्रतिवर्ष हुआ करता था, वो भी पूरा नहीं हो सका। तो उन सारे वे सभी स्थायी साधक जो यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके लिए भी और जो आगे चलकर संपूर्ण जीवन को साधनमय बनाने के लिए मानव सेवा संघ के स्थायी साधक होना पसंद करेंगे, उनके लिए भी यह सूचना है। क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किस प्रकार से आप अपने साधन के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, इसकी सूचनाएं सब हैं। संघ की नीति यह नहीं है कि आप संघ की सेवा करते हैं तो बड़े अच्छे आदमी हैं और नहीं करते हैं तो अच्छे आदमी नहीं है। संघ की सेवा करते हुए अधिकार मूलता रखते हैं तो यह साधक का लक्षण नहीं है। इसलिए परामर्श यह है कि संघ की सेवा कीजिए अथवा मत कीजिए, पर अस्थाई साधक होकर रहिए, जो अपने पर सबका अधिकार मानता है और अपना अधिकार किसी पर नहीं मानता है, वही अस्थाई साधक हो सकता है। जो इस सिद्धांत को ठुकराता है अथवा नहीं पसंद करता है, वह अस्थाई साधक नहीं है, वह सही अर्थ में साधक ही नहीं है। संघ का अस्थाई साधक जो होता है, वह सेवा को प्रधानता देता है, पद को नहीं। सेवक में यदि पद में लुटता है तो वह अस्थाई साधक नहीं हो सकता। प्रश्न, मानव सेवा संघ का अस्थाई साधक कौन कहलाएगा? उत्तर, जिसको यह विश्वास है कि संघ की पद्धति से मेरा कल्याण होगा। प्रश्न, अस्थाई साधकों के लिए निश्चित व्रत नियमादि बनाना आवश्यक है? उत्तर, व्रत नियमादि बनाना मानव सेवा संघ की पद्धति ही नहीं है। अस्थाई साधक का सबसे बड़ा व्रत यह होता है कि वह सत्संग से साधन का निर्माण करे, अभ्यास का अनुसरण नहीं करे, किसी न किसी नाते सभी को अपना माने और प्रेमी होने के लिए प्रभु को अपना माने। जो अपने को अस्थाई साधक मानेगा, जिसके हृदय पर संघ की छाप लगी है, वह अपने आप ही अपना रहन सहन बदलेगा। परंतु संघ की यह पद्धति नहीं है कि साधक पर जोर डाला जाए कि तुम अपने को अवश्य बदलो। स्थाई साधक के लिए संघ की पद्धति में स्थाई श्रद्धा का होना अनिवार्य है, फिर वह आश्रम में आवे अथवा न आवे, संघ में संपत्ति लगावे अथवा न लगावे, उसको अपना कल्याण अभिष्ट होना जरूरी है। जैसे संघ की सेवा के लिए आजीवन कार्यकर्ता का एक विभाग बनाया स्वामी जी महाराज ने, कि ऐसे साधक, ऐसे भाई बहन जो आजन्म आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके, अपना करके, अपने पास कोई संपत्ति न रख करके, अपने को संघ की सेवा में खाद बना देने के लिए जो तैयार है, वो तो उसको आजीवन कार्यकर्ता बनाया गया, वो एक विभाग है। तो ऐसे साधकों का संपूर्ण जीवन साधन में और संघ की सेवा में लग जाता है। फिर कुछ ऐसे घर गृहस्थी वाले लोग भी थे जिन्होंने कहा कि महाराज, हम लोगों को तो तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए कि जब इस प्रकार की हम तैयारी कर सकें। तो उनको तैयारी के लिए समय जो दिया गया, उसमें यह बताया गया कि सब संपत्ति और सारा जीवन और सब कुछ संघ में लगाने के लिए तैयार न हो, तो कम से कम अपने जीवन में से बुराइयों का त्याग करो, विचार के आधार पर अधिकार लोलुपता और पद लोलुपता का त्याग करो, जिनसे संबंध माना उनकी सेवा करो, और प्रेमी होने के लिए प्रभु में विश्वास करो, और अपने यहाँ की जो यह पद्धति है कि ईश्वर विश्वास और संसार से असंग होना और उदारता पूर्वक पर पीड़ा से पीड़ित होकर सेवा करना, ये व्रत जो है ये मनुष्य के स्वधर्म है, ये सत्य की स्वीकृति से ही पूरे होते हैं, इनके लिए अभ्यास अपेक्षित नहीं है। तो जिन लोगों को अभ्यास वाले साधन में विश्वास है, वे संघ के स्थायी साधक नहीं हो सकते। जिन लोगों को इस प्रणाली में विश्वास है, ये बात जम गई कि जीवन में परिवर्तन सत्संग से आता है और सत्संग मनुष्य का पुरुषार्थ है और सत्संग का परिणाम है कि जीवन में साधन की अभिव्यक्ति हो जाए, जैसे शांति की अभिव्यक्ति है, तो शांति की अभिव्यक्ति कैसे होगी भाई? तो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, निर्मम और निष्काम होने का ये व्रत जो स्वीकार करेगा, उसके भीतर शांति आ जाएगी। निर्मम और निष्काम हुए बिना थोड़ी थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठकर हाथ पांव मोड़ लेने से, आंखें बंद कर लेने से, सांस रोक लेने से शांति की अभिव्यक्ति होती होगी, यह विश्वास मानव सेवा संघ का नहीं है। तो सदस्य होने की चर्चा प्रातः काल हो चुकी थी, अब स्थायी साधक होने की चर्चा हो रही है। इस पूरी चर्चा में आप देखेंगे कि उद्देश्य केवल इतना है कि व्यक्ति स्वयं अपने विकास में अपने आप स्वाधीन होकर के आगे बढ़ सके, पराधीन न रहे। बड़े दुख की बात है, मेरे नजदीकी लोग अभी थोड़े दिन पहले आए थे यहाँ मथुरा में, एक यज्ञ होता है रामाश्रय सत्संग कहलाता है, वहाँ पर लोग आए थे। शरीर के संबंध से पुराना संबंध भी था उन लोगों के साथ, उनकी चर्चा मैं सुन रही थी। पूछा मैंने कि आप लोग क्या करते हैं, वे लोग बता रहे थे। एक महिला जिसको कि मैं बचपन से जानती हूँ उस सत्संग में है, तो वो कहने लगी कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई थी, तो हमारी गुरु माता ने अपनी ओर से 10 वर्ष मुझे दिए, अब देखो इस 10 वर्ष में काम पूरा होता है कि नहीं होता है। तो मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि ना हमसे जीते बनता है ना मरते बनता है, ऐसे वो कह रही थी। तो मैं नहीं कहती हूँ कि उस सत्संग का दोष है, सत्संग में क्या होता है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन साधक की इस दशा को देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ कि आदमी जिस बात में स्वाधीन है उसमें भी अपने को कितना पराधीन बना के बैठ गया। बहुत तकलीफ। और फिर मेरे मुझसे पत्र व्यवहार उनका होता रहता है, तो चिट्ठी लिखती है तो जो भी कुछ अपने मत के अनुसार लिखती है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ। मानव सेवा संघ की यह नीति ही नहीं है कि दूसरे साधक की दूसरी प्रणाली की साधनाओं में उस बेचारे के लिए विकल्प खड़ा कर दो कि संदेह पैदा कर दो, ये अपने लोगों का काम ही नहीं है। भाई तुम कहीं के भी साधक हो और किसी भी प्रकार की प्रणाली तुम्हारी हो, मैं तो हृदय से यही चाहूंगी कि भगवान तुम्हारी ही प्रणाली से तुमको पार लगा दे, तुम्हारा कल्याण हो जाए, ये मुख्य बात है। और मैं जैसे कहती हूँ वैसे करके हो जाए और दूसरे जैसे कहते हैं वैसे ना हो, वो नहीं है। कहीं से भी सीख के आओ, कोई भी मत विचार संप्रदाय तुम्हारा हो, किसी भी प्रणाली का अनुसरण तुम करते हो, मेरे हृदय की सद्भावना यही है कि तुम्हारा कल्याण तुम्हारी ही प्रणाली से हो जाए, प्रभु तुम्हारे पर कृपा कर दें, सहायता दे दें, तुम्हें पार लगा दें, तो आदमी शांति प्राप्त कर सके, आदमी पराधीनता से मुक्त हो सके, ईश्वर में विश्वास करने वाला अपने ही हृदय में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करके प्रेम में मस्त हो सके, बस इतना ही उद्देश्य है। तो उनको मैं उत्तर देती रहती हूँ, तो उत्तर दे देती हूँ उनकी बातों का उल्लेख किए बिना। संघ के सिद्धांत के अनुसार जो जीवन का सत्य है उसी के आधार पर मैं उत्तर दे देती हूँ। तो एक बार आई हमारे पास चिट्ठियों का उल्लेख करते हुए कहने लगी कि देखो गुरु माता ने तो हमारा इतना इतना काम कर दिया और अब छोटी छोटी शक्तियों ने ऐसा ऐसा परमिशन दे दिया है, अब बड़ी शक्ति का परमिशन मिल जाएगा तो ये काम हो जाएगा। तो हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम कहे कि तुम लोग कहाँ जाकर के किस पराधीनता में फंस गए भाई, सब कुछ करने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम स्वयं अपनी जानी हुई भूल को मिटा सकती हो, तुम स्वयं ईश्वर को मान करके उनमें विश्वास करके उनके शरणागत हो सकती हो, अभी बीच में कौन छोटी छोटी शक्तियां हैं, कौन बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये क्या है, तो कुछ हमारी समझ में नहीं आ रही। और बड़ा दुख होता था मुझे, वो तो नजदीक की है, उसको तो मैं खूब डांटती भी हूँ, मना भी करती हूँ, बताती भी हूँ कि भाई ऐसे ऐसे मत करो, तो बड़ा अफसोस होता है। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट कर दिया अपने लोगों का रास्ता, और कितने खुले शब्दों में कह दिया कि भाई तुम संस्था में संपत्ति लगाओगे तो अच्छे आदमी कहलाओगे, सेवा करोगे तो अच्छे आदमी कहलाओगे, और नहीं करोगे तो अच्छे आदमी नहीं कहलाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आदमी कौन है? जो अपने अधिकार का त्याग करता है, दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है। अच्छा आदमी कौन है? जो पद लेकर के भी सेवा करता है, पद त्याग करके भी सेवा करता है। अच्छा आदमी कौन है? जिसने अपने चित्त को निर्विकार बना लिया। अच्छा आदमी कौन है? जिसने ईश्वर में विश्वास करके अपने को उनके समर्पित कर दिया। ठीक है ना? स्थाई साधक के लिए संघ की पद्धति में स्थाई श्रद्धा का होना अनिवार्य है, फिर वह आश्रम में आवे अथवा न आवे, संघ में संपत्ति लगावे अथवा न लगावे, उसको अपना कल्याण अभिष्ट होना जरूरी है। संघ का स्थाई साधक होने का ये शर्त है, अपना कल्याण आपको अभिष्ट होना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसके रहन सहन में स्वयं ही परिवर्तन आ जाएगा। प्रश्न है, स्थाई साधक को क्या करना चाहिए? उत्तर, सेवा, सार्थक चिंतन, जितेंद्रियता, यह सब करना चाहिए। स्थाई साधक में अपने कल्याण की बात मुख्य है, साधन निर्माण के साथ साथ उसे सेवा करना है। स्थाई साधक का मतलब यह है कि वह इंद्रिय लोलुपता से जितेंद्रियता की ओर और स्वार्थ भाव से सेवा की ओर बढ़े। उसके भीतर यह पीड़ा होती रहे कि हाय कैसे आगे बढ़ी, कैसे आगे बढ़े। स्थाई साधक हुए बिना जो सेवा करता है वह भोगी है। स्वामी महाराज का वाक्य है, स्थाई साधक हुए बिना सेवा करने का क्या मतलब? जो अधिकार लोलुपता से मुक्त नहीं हो सका, जो सेवा करने के लिए सभी को अपना नहीं मान सकता, जो वस्तुओं के प्रति अपनी ममता नहीं तोड़ सकता, उसका सेवा करना सेवा हो सही नहीं। जो सम्मान के लिए सेवा करता है, जिसको अपना कल्याण अभिष्ट नहीं है, वह स्थाई साधक नहीं है। स्थाई शब्द केवल इसलिए उसमें जोड़ा गया कि दो तरह के लोग समाज में पाए जाते हैं। सेवा संघ ज्वाइन करना, विधि के अनुसार सदस्य बनना, स्थाई साधक होने का व्रत लेना, आजीवन कार्यकर्ता होना अनिवार्य नहीं है। आप मनुष्य हैं, आपके भीतर शांति, स्वाधीनता और प्रेम की मांग है, तो उस मांग की पूर्ति के लिए मानव सेवा संघ जो सलाह देता है, उस सलाह को मान लिया और अपना कल्याण कर लिया, तो इस दृष्टि से आप भी हमारे लिए बड़े सहयोगी हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके भीतर यह लालसा जगती है कि अच्छा ऐसा स्वतंत्र विचार कि जिसमें किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है, गरीब हो तो क्या, अमीर हो तो क्या, और पढ़े लिखे हो तो क्या, और बिना पढ़े लिखे हो तो क्या, कुछ परवाह की बात नहीं है। शरीर रोगी है तो भी, स्वस्थ है तो भी, उच्च वर्ण में जन्मे तब भी, निम्न वर्ण में जन्मे तब भी, मनुष्य यदि मनुष्य है तो उसकी बनावट ही ऐसी है कि वह शांति, स्वाधीनता और प्रेम की मांग अनुभव करेगा, और जिसमें यह मांग पैदा हो जाएगी उसकी उन्नति आरंभ हो जाएगी। मांग पैदा होने से उन्नति आरंभ हो जाती है और मांग तीव्र होने से जीवन पूर्ण हो जाता है। तो इसमें स्वाधीनता है, पूरी स्वाधीनता है। जब ये चर्चा हो रही थी तो किसी ने स्वामी जी महाराज से पूछा कि हम तो घर छोड़ के अभी निकल नहीं सकते हैं और कमाई हुई संपत्ति अभी हमारे परिवार को भी बहुत जरूरत है, तो समाज की सेवा कर नहीं सकते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ें? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम धन कमाओ ईमानदारी से और मर्यादा पूर्वक काम भी करो, उदारता पूर्वक परिवार के साथ रहो भी, लेकिन तुम्हारे भीतर एक लगन उठनी चाहिए। कौन सी लगन? कि सोते जगते उठते बैठते काम धाम करते हुए भीतर एक लगन लगी रहे कि मैं कैसे साधना में आगे बढ़ूं, मैं कैसे आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ूं, मैं कैसे ईश्वर विश्वास में आगे बढ़ूं। तो तुम्हारे भीतर की जो यह लगन है कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, इस लगन में ही तुम्हारी उन्नति आरंभ हो जाएगी। और साहित्य में आपने पढ़ा होगा, समझी महाराज ने जो साहित्य हम लोगों के सामने रखा है उसमें आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य के जीवन में मांग की जागृति से ही मांग की पूर्ति हो जाती है। इसी आधार पर कहा गया कि इसमें काल और स्थान का कोई भेद नहीं है, बाहरी परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है, इन सब बातों से कुछ मतलब नहीं है। और अब मैंने जीवन का विश्लेषण करके देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी भाई बहनों को जो परिस्थिति मिली है वही हमारे जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। जो मिला है सो कितनी बड़ी बात है, आप सोच करके देखिए। मुझे एक बहन मिली थी, बरेली में सत्संग होता था, प्रतिवर्ष जाती थी मैं, 80 में नहीं गई थी, समय नहीं था, कई वर्ष पहले की बात है। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि भाई सत्य की अभिव्यक्ति में और शरीर की दशाओं से कोई संबंध ही नहीं है। तो सुना उन्होंने, जब मैं सत्संग से बाहर निकली तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और खूब गले से लिपट गई और रोने लगी। तो मैंने कहा कि क्या बात है भाई, आप क्यों रो रही हैं? तो उस महिला ने कहा कि आप तो कह रही हैं कि भगवान तो रोगी को भी मिलते हैं, निरोगी को भी मिलते हैं, तो सच्ची बात है? मैंने कहा कि हाँ बात तो सच्ची है, सच्ची जान करके ही मैं कह रही हूँ। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि कई वर्षों से मेरा शरीर अस्वस्थ है, सास और पति सेवा करते रहते हैं और मैं बहुत दुखी रहती हूँ कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई, सास की सेवा मुझे करनी चाहिए, पति की सेवा मुझे करनी चाहिए, तो ये दोनों हमारे शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं तो मुझे तो जिंदगी भार मालूम होती है, ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी कब को ये शरीर खत्म हो जाए तो अच्छा है। तो कई वर्ष इस दशा में बीत गए, पता नहीं आज मुझको क्या हो गया, सवेरे से ही मेरे दिल में एक बात लगी और मैंने इन माँ बेटों से दोनों से कहा कि आज मुझको आश्रम में ले चलो, सत्संग हो रहा है, आज मैं सुनने जाऊंगी, तो ये लोग ले आए, तो आप तो ऐसे ऐसे कह रही हैं। हमने कहा कि हाँ भाई ठीक है, अनुभवी संत के मुख से मैंने सुना है और मैं विश्वास करती हूँ कि ये सत्य है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो कहने लगी कि बहुत अच्छी बात है, तो अब तो मैं मरने को नहीं सोचूंगी, अब तो मैं सोचूंगी कि भगवान अगर बीमार को भी मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम घर का काम नहीं कर सकते, सास और पति की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान को तो पा सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ पा सकते हैं। तो बातचीत करके वो चली गई, मैं भी भूल गई, फिर उसके बाद क्या ध्यान रहे। फिर कई वर्षों के बाद वही महिला मिली मुझे, खूब हृष्ट पुष्ट शरीर तंदुरुस्त, और आकर के फिर हमसे लिपटी और कहने लगी कि माता जी मुझे पहचाना आपने? हमने कहा कि भाई मुझे याद तो नहीं है। फिर उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा कि देखिए तो मुझे तो बहुत आराम मिल गया, बहुत आराम मिल गया, तो शरीर भी अच्छा हो गया, सास और पति की सेवा न करने का दुख भी मिट गया और ईश्वर विश्वास भी मिल गया। बहुत आनंदित हो गए। तो यह जो एक स्वाधीन पथ है कि कोई इस दिशा में पराधीन नहीं है, एक विशेष संप्रदाय की महिला स्वामी जी महाराज के सत्संग में आकर के खुद आनंदित तो हो गई, अब तो उनका सारा परिवार ही मनोसेवा संघी है। तो वो कहती थी कि मैंने अपने यहाँ मैंने उनके संप्रदाय में ये सुना था कि स्त्री शरीर में आदमी की मुक्ति नहीं होती। बहुत दुख की बात, अब शरीर तो भगवान ने जो दिया है तो दिया है, अब क्या करें उसका। तो मैं ऐसा एक दो उदाहरण अपने लोगों के सामने रख रही हूँ कि मानव सेवा संघ ने इस प्रकार की पराधीनता मनुष्य के सामने नहीं रहने दिया कि स्त्री शरीर होने के कारण से तुम मुक्ति से निराश हो जाओ, कि बीमार होने के कारण से तुम ईश्वर भक्ति से निराश हो जाओ, ऐसा नहीं है। कि पढ़ा लिखा नहीं है तो ज्ञान से निराश हो जाओ, ऐसा नहीं है। शरीर की और बाहर की परिस्थितियों से सत्य की अभिव्यक्ति में कोई भेद नहीं पड़ता है। इस बात को हम सब भाई बहन जान लें और अपने कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहें। तो मैंने महाराज जी के मुख से ऐसा सुना है और बात बिल्कुल पक्की लगती है मुझे कि प्रभु की कृपालुता और संत की सद्भावना सदैव सभी साधकों के साथ रहती है। और सचमुच जो अपनी दशा से असंतुष्ट होकर अविनाशी जीवन की अभिलाषा लेकर आगे बढ़ता है, जीवन का मंगलमय विधान इतना सुंदर है कि उसके जीवन में पूर्णता अवश्य आती है। तो अपना कल्याण अभीष्ट हो, सत्संग की महिमा में निष्ठा हो और सत्संग के द्वारा साधन का निर्माण करना चाहे और यथासंभव यथाशक्ति जहाँ पर है वहीं पर सुख और स्वार्थ को छोड़ करके सेवा पसंद करें तो आप मानव सेवा संघ के स्थायी साधक हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे आपके जीवन में शांति की अभिव्यक्ति होने लगेगी, शरीर और संसार की दासता कट जाएगी, तो आपका वह कल्याणमय जीवन ही मानव सेवा संघ का जीता जागता चित्र बन जाएगा और उसके प्रभाव से समाज में बहुत अच्छे भावों और विचारों का प्रसार होगा।